मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 23 मई 2018 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं थोड़े से एक निगेटिव एस्पेक्ट पर बात करने जा रहा हूं। पॉजिटिव एस्पेक्ट पर तो हम लोग खूब बातें करते हैं और इनफैक्ट सच पूछे तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि लाइफ में हम जब लाइफ मैनेजमेंट के बारे में कुछ बात करेंगे तो ज्यादातर बातें हमें पॉजिटिव ही करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हमारे विचार होते हैं, जिस तरह की बातचीत होती है, उसी तरह की तरंगे हमारे आसपास पैदा होती हैं और उनका प्रभाव सीधे सीधे हम पर पड़ता है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बातें करो, पॉजिटिव माहौल में रहो, तो उससे पॉजिटिविटी आती है और नो डाउट ये सच भी है। लेकिन फिर मैं मुझे कभी कभी लगता है कि क्या सच में हर जगह पॉजिटिविटी है? क्या व्यवहार में ये संभव है कि हम हर समय पॉजिटिविटी ही सोचें? फिर मुझे ये भी लगने लगता है कि क्या सच में हम निगेटिविटी से एकदम दूर रह सकते हैं? क्या निगेटिविटी हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है? और अगर निगेटिविटी भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है, जो कि है ही, तो स्वाभाविक है कि कभी कभी हमें उनके बारे में भी बात करना चाहिए। और फिर मुझे मित्रों ये भी लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, कि अगर कोई चीज निगेटिव है तो उसे पॉजिटिव भी तो बनाया जा सकता है। कोई अपने आप में निगेटिव तो एकदम चीजें होती नहीं है। निगेटिव वो चीज इसलिए है क्योंकि उसका अस्तित्व है, और उसका अस्तित्व इसलिए है कि ये पूरी की पूरी जो प्रकृति है वो दो विरोधी तत्वों के सामंजस्य से बनी हुई है। यहां दो विरोधी चीजें हैं और दोनों के बीच में सामंजस्य है, और उन सामंजस्य के कारण ये प्रकृति चल रही है, ये जीवन चल रहा है। ऐसे ही हमारा अपना जीवन भी है कि अगर यहां प्रेम है तो यहां घृणा भी है, यहां कृतज्ञता भी है, अगर कृतज्ञता है तो यहां ईर्ष्या भी है, यहां करुणा है तो यहां क्रोध भी है। तो इन दोनों में से क्या हम एक को एकदम किनारे कर सकते हैं, या फिर हमें इन दोनों के साथ ही जीना पड़ता है? और अगर इन दोनों के साथ ही जीने के लिए हमारी मजबूरी है या हम अभिशप्त ही है कह लीजिए, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये जो निगेटिव वाला जो एस्पेक्ट है, ये जो अंधेरा पक्ष है, इसे हम उजाले में तब्दील कर ले? और अगर उजाले में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम चलिए इसके अंधेरे के कालेपन को थोड़ा सा कम कर दें, हमारे लिए वो चीज उपयोगी हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है मित्रों कि जो जीवन का जो अंधेरा पक्ष है, जिसे हम कृष्ण पक्ष कहेंगे, उसकी भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। 15 दिन तो आपको कृष्ण पक्ष में बिताने ही पड़ेंगे, और जब आप 15 दिन बिता लेंगे तो मान करके चलिए कि 15 दिन आपके शुक्ल पक्ष के भी होंगे, उजाला भी आएगा ही, और इन दोनों से मिलकर के ही एक माह मंथ बनता है। तो मित्रों, आज मैं थोड़ी सी आपसे ईर्ष्या पर कुछ बात करने जा रहा हूं, ईर्ष्या के जहर पर। और दरअसल होता यह है कि देखिए, जब भी आप 5-7 लोगों, 2-4-5 लोगों के साथ बैठ जाते हैं तो फिर दुनिया भर की बातें चलती हैं, गपशप होती है, और उस गपशप में कुछ लोगों की तारीफ भी होती है, जो कि बड़े कम ऐसे अवसर आते हैं जब किसी की तारीफ हो। ज्यादातर तो यही है कि किसी एक को आप पकड़ लेते हैं, उसको फिर अपने आलोचना का और अपनी ईर्ष्या का एक प्रकार से मुर्गा बना लेते हैं, है ना, और फिर लोग अपने अपने ढंग से उसका मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं, ये बिना जाने ही कि यहां से जो 5 लोग हम बैठे हैं, वो जब 4 लोग यहां से उठ करके चले जाएंगे और दूसरी महफिल में पहुंचेंगे तो पता लगा कि इस बार जो वो मुर्गा बनाएंगे वो लोग मिलकर के, वो मुर्गा हम होंगे। हम इस बात को उस समय भूल जाते हैं और लगता है कि ठीक है यार, चलो अब ये मसालेदार चीज मिली है और इस मसालेदार चीज का अब स्वाद लिया जाए, और ईर्ष्या और आलोचना कुछ उसी तरह की बातें होती हैं। दोस्तों, जब हम किसी की ईर्ष्या करते हैं तो किसी से ईर्ष्या करते हैं तो आपने कभी अनुभव किया है कि आपका अंतर मन कैसा होता है, अंदर आपको कैसा लगता है? ईर्ष्या की बात, जैसे कि क्रोध हम करते हैं, ईर्ष्या जब भी हम करते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि हम अंदर से असहज हो जाते हैं, हम वैसे नहीं रह जाते जैसे कि हम थे, और सच पूछे तो हम वैसे भी नहीं रहते जैसा कि हम होना चाहते हैं। ठीक है भैया, हम ठीक नहीं है, हम ठीक होना चाहते हैं, और ईर्ष्या करने के बाद हम ठीक हो जाते हैं, फिर तो ईर्ष्या करनी चाहिए क्योंकि हम ठीक हो जाते हैं। नहीं, जैसे ही हम ईर्ष्या करते हैं हमारे अंदर का जो रासायनिक समीकरण है वो बदलने लगता है, और आप पाएंगे कि मन कुछ खट्टा सा हो जाएगा, अनमना सा हो जाएगा, हृदय में कुछ बेचैनी सी हो जाएगी। अब आप देखिए कि आपके दिमाग में केवल एक ईर्ष्या का थॉट भर आया है, केवल एक छोटा सा विचार आया है, और उसने आपको बैठे ठाले बेवजह बेमन कर दिया, अनमना कर दिया, और आपके टाइम को किल कर रहा है वो, उसको कुछ नहीं पड़ी है, वो तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। ऐसे समय पे मुझे लगता है कि हम भूल जाते हैं कि बेसिकली हम ईर्ष्या तो किसी पर कर रहे हैं, किसी से कर रहे हैं, यानी कि हम दूसरे पर निशाना लगा रहे हैं, लेकिन इस निशाने से जो घायल होने वाला कोई व्यक्ति है तो वो मैं खुद हूं, क्योंकि जिस पर से मैं ईर्ष्या कर रहा हूं उसको तो कुछ पता ही नहीं है, अभी तो कम से कम पता नहीं है, अगर पता होगा भी तो ठीक है, वो अपने में मस्त है, वो बल्कि और ज्यादा मेरी जो ईर्ष्या है वह दूसरे के लिए प्रेरणा का काम करती है कि अच्छा बेटे ठीक है तुम चिढ़ते हो ना, ईर्ष्या करते हो ना, कोई बात नहीं, लो और चिढ़ो और चिढ़ो। तो वो अपनी तरक्की के माध्यम से आपकी ईर्ष्या को भपकाना चाहता है, और हम हैं कि और ज्यादा अपने ईर्ष्या को भपकाते चले जाते हैं, और बिना ये सोचे कि ये जो आग जल रही है, इस आग में इनफैक्ट जल हम ही रहे हैं, बल्कि इस आग से तो उसको ताप की ऊर्जा मिल रही है जिससे हम ईर्ष्या कर रहे हैं। आप कभी इस स्थिति के बारे में सोच करके देखिए कि हम सब अपने को बड़ा ज्ञानी कहते हैं, हम अपने को बड़ा समझदार कहते हैं, और जब हमारी उम्र थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है तो हम गर्व से इस बात का दावा करते हैं कि क्या ये बाल जो हैं धूप में सफेद हुए हैं, मतलब हमारे पास बहुत अनुभव है, अनुभव का खजाना है हम। लेकिन ये जो सामान्य सी चीज है जो अनुभव से व्यक्ति में शामिल होती चली जाती है, आती चली जाती है, वो कहां गई अब? क्योंकि जब सच में अगर अनुभव हो रहे हैं तो होना यह चाहिए कि धीरे 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 ईर्ष्या का तत्व शून्य तक पहुंच जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि 50 साल की उम्र होते होते तो ये खत्म हो ही जाना चाहिए। ठीक है, जब हम यंग रहते हैं, खूब ऊर्जावान रहते हैं, तो थोड़ी सी ईर्ष्या रहती है, मैं ये नहीं कह सकता कि ईर्ष्या होती ही नहीं है, होनी ही नहीं चाहिए, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, तो कि ये निगेटिव फैक्टर भले ही हो लेकिन जीवन का हिस्सा है, क्योंकि जीवन है ही इस तरह का, और यही तो कोशिश होती है जीवन में, जो आध्यात्मिकता है या जो परिष्कार है और जो संस्कार है वो है क्या, केवल यही है कि कैसे हम इस निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वही आध्यात्मिकता है और वही जीवन की ऊंचाई है और वही जीवन की शांति है। जिस सीमा तक हम कर लेते हैं उस सीमा तक आध्यात्मिकता के पायदान पर हम पहुंच जाते हैं। सोच करके देखिए कि जो ईर्ष्या है उसके करने से मिलता क्या है। कभी कभी तो मेरे दिमाग में एक बात आती है और वो आती है कि ईर्ष्या करना कुछ कुछ उसी तरह से है जैसे कि मान लीजिए कि मुझे कुत्ते ने काट लिया हो, मुझे कुत्ते ने काट लिया, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो अब मैं क्या करूं? तो मैं अब उस अपने गुस्से को उतारने के लिए या कुत्ते से ईर्ष्या करते हुए, थोड़ा सा फर्क है गुस्से, गुस्सा और ईर्ष्या में, लेकिन आप उन दोनों को यहां जोड़कर देख सकते हैं कि मैंने भी कुत्ते को काट लिया कि ले तुमने मुझे काटा ना, बदले में मैं तुझे काट लेता हूं। कुत्ते का क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो काय करके भाग जाएगा। आपको काटने से क्या मिला, मुझे काटने से क्या मिल गया? मुंह में उसके बाल भर गए, खो 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 कर रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। ज्यादा ज्यादा ये होगा कि मेरा गुस्सा उतर गया, थोड़ा सा शांत हो गया, तो मैं थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर रहा हूं, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, फायदा कुछ नहीं हुआ, यथार्थ में तो मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया। और कुल मिलाकर के हुआ ये कि जो मेरे पल खूबसूरत तरीके से बीतते, जिन मोमेंट को मैं एंजॉय कर रहा था, जिनमें कुछ कर करके मैं अपने जीवन को खूबसूरत बना सकता था, सजा संवार सकता था, उसको मैंने ईर्ष्या के हवाले करके उसका मैं गुलाम बन गया, अपनी जिंदगी की बागडोर उस ईर्ष्या के हाथ में थमा दी। उस ईर्ष्या ने मेरे अंदर होली खेली, जहर की होली खेली, और मेरा अंदर का पूरा हिस्सा उस जहर से झुलस गया। जिस होली से रंगीन होना चाहिए था वह इस जहर की होली से काला पड़ गया, बात खत्म हो गई। मित्र, मुझे लगता है कि यदि हम इन सब चीजों पर थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा वक्त निकाल करके विचार करें, तो आप पाएंगे कि चीजें एकदम बदल जाती है। मुश्किल यह है कि हम विचार ही नहीं करते, जो चीज हो रही है मानकर चलते हैं कि इसको तो यार ऐसे ही होना चाहिए, या ये ऐसे ही होता रहता है, या कुछ भी नहीं किया जा सकता, तो उन चीजों को वैसे ही होते रहने देते हैं, और जब होते रहने देते हैं तो वैसी चीजें होती रहती हैं, बात खत्म हो जाती है। तो मित्रों, आप सब भी अपने अंदर इन चीजों को टटोलें और देखें कि अगर कहीं पकड़ में आ जाती है तो कैसे हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, आप सबकी अनुमति चाहूंगा, इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।